2022 के लिए महामारी के इस समय में छात्र सुरक्षित रूप से कक्षाओं में लौट सकें, इसके लिए सब तरफ तैयारी की गई है। विक्टोरिया ने COVID-19 स्वास्थ्य उपायों की एक श्रृंखला के साथ अपनी बैक टू स्कूल योजना की घोषणा की है। अब एक ओर जहां अधिकारी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ बच्चों के लिए क्लासरूम में आमने सामने रहने की प्रणाली द्वारा शिक्षा लेने की आवश्यकता पर समर्थन करते हैं, वहीं ये भी चिंता है कि स्कूल के पहले टर्म की खासी रुकावटों या मुश्किलों के साथ शुरुआत होगी। अब इसी पर एक रिपोर्ट। जनवरी के अंत में विक्टोरियन छात्र कक्षाओं में लौट रहे हैं। COVID-19 के चलते कई बच्चे लगभग 18 महीनों तक रुकावट भरी और दूरस्थ शिक्षा के लिए मजबूर रहे हैं। विक्टोरियन सरकार ने बैक टू स्कूल योजना जारी की है, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 14 मिलियन से अधिक रैपिड एंटीजन परीक्षणों की डिलीवरी शामिल है। प्रीमियर डैनियल एंड्रूज का कहना है कि स्टाफ और छात्रों को COVID-19 से बचाने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे।
The features of school returning will be twice weekly rapid antigen testing. That surveillance testing is all about detecting cases, not necessarily every case. That would be almost impossible given the amount of transmission that's in the community. But it's about finding as many cases as we can and shutting down those chains of transmission.
श्री एंड्रूज कहते हैं कि ये चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि दूरस्थ शिक्षा यानी रिमोट या डिस्टेंस लर्निंग का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा।
It'll be challenging. Not everything will go exactly as we had hoped. That's the nature of this virus. There's no response that's perfect. But through hard work and goodwill, I'm absolutely confident that we'll get our kids back and we'll keep them there and we'll keep them safe as we possibly can.
योजना के तहत विशेषज्ञ स्कूलों में चिकित्सीय रूप से कमजोर छात्रों और शिक्षकों से आग्रह किया जाएगा कि वो सप्ताह में 5 दिन परीक्षण करें। 50,000 से अधिक वायु शोधन उपकरणों यानी एयर प्योरिफिकेशन डिवाइसेस को उपलब्ध कराने का ऑर्डर किया गया है और इन्हें पहले टर्म की शुरुआत के लिए समय पर ही सरकारी और कम शुल्क वाले गैर सरकारी स्कूलों में वितरित किया जाएगा। डेप्यूटी प्रीमियर जेम्स मार्लिनो का कहना है कि क्लासरूम में प्योरीफायर, स्टाफ टीकाकरण जनादेश और तीसरी कक्षा और उसके ऊपर की कक्षाओं के छात्रों के लिए मास्क का अनिवार्य होना, ये सब वायरस से सबको सुरक्षित रखने के लिए उठाए मजबूत कदम हैं।
More than 99.7% of staff were double dosed by the end of term 4. So I have got every confidence that staff will enthusiastically respond to the third dose vaccine mandate.
इसके साथ ही वायरस के सकारात्मक मामले का पता चलने पर बच्चों के माता पिता को सूचित किया जाएगा और अपने बच्चे पर लक्षणों की निगरानी करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन अब स्कूलों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेलबर्न में रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल से बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर शैरन गोल्डफील्ड का कहना है कि इस तरह से क्लासरूम में व्यक्तिगत रूप से शिक्षा से बच्चों को भावात्मक रूप से लाभ होगा।
As kids go back, as we get the benefits of the mental health and well-being of children and being at school, we also think about, okay, what are the opportunities for really reinforcing that within that extraordinary setting called schools and early childhood education and care that can really look after children's mental health and well-being as well as their development and their learning.
New South Wales भी दोनों राज्यों के बीच सहयोग के साथ लगभग इसी तरह की बैक टू स्कूल योजना अपना रहा है। प्रीमियर डोमिनिक पेरोटेट का कहना है कि बच्चों को स्कूल में रखना उनकी पहली प्राथमिकता है।
We all know that kids do better at school, not just from an educational perspective, but from a mental health and social outcome perspective. It is where our kids learn the best, and where opportunity is created.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैरी जेंट का कहना है कि चाहे सुरक्षा के उपाय कुछ भी हों, स्कूलों के खुलने पर मामलों में वृद्धि होने की संभावना है।
try and minimise their children's activities or connections with other children in sleepovers and other activities that might drive infection, so that we can preserve that face-to-face time at school.
अब जबकि कई माता-पिता तो इस योजना का समर्थन कर रहे हैं, कुछ इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि इन सुरक्षा उपायों का उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
Personally, I think two tests is a bit excessive. I think maybe one a week. I'm fine with that as long as, like, the tests are done at home. I wouldn't trust someone else constantly testing my daughter at school.
It's a pain for kids. So just by hearing that two tests per week, that's a bit too much for kids, I guess.
उधर New South Wales Teachers Federation पूरे राज्य भर में छात्रों, कर्मचारियों और परिवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित है। फेडरेशन अध्यक्ष एंजेलो गावरियुल्लातो का कहना है कि ये स्कूल वर्ष के लिए एक अलग रुकावट भरी शुरुआत होगी और स्टाफ के कई कर्मचारी चिंतित भी हैं।
There is no other industry where one is required to be on a work site, literally with hundreds of other people, in some instances more than 2,000, stuck in restricted, often poorly ventilated spaces, also known as classrooms, with up to 30 people.
यूं क्वींसलैंड ने तो पहले से ही स्कूल वर्ष की शुरुआत को देरी से शुरू करने की बात करती है। स्वास्थ्य मंत्री इवेट डाट ने उन माता पिता को धन्यवाद दिया है जो अपने छोटे बच्चों को टीकाकरण कराने के लिए आगे लेकर आए हैं।
5 to 11 year olds, we are now almost at 25%, which means almost 1 in 4 of our 5 to 11 year olds are vaccinated now, 24.62%. And I remind parents that it's just as important to get your 12 to 15 year olds vaccinated as well. We are not at 70% double dose for the 12 to 15 year olds. So we really want to see those numbers come up before they start the school year.
What is speech? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ने भी फेस टू फेस लर्निंग वापसी के लिए कुछ सकुचाती सी घोषणा की है। SBS न्यूज के लिए ब्रुक यंग की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया SBS हिंदी के लिए अनीता परार ने।